समर्थ ने जैसे ही फोन उठाया, दीक्षांत ने जल्दी से कहा, यहाँ त्रिशा कल्याण सिंह से तेरी शिकायत कर रही है, तू कहाँ है, जल्दी से हॉल में आ। समर्थ ने जैसे ही त्रिशा का जिक्र सुना, उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन फिर उसने गला सही करते हुए कहा, हाँ आ रहा हूँ, कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ जो इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हो। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दीक्षांत को समझ नहीं आया कि वो इतने गुस्से में क्यों था और उसकी आवाज़ में क्या हुआ था। वहीं समर्थ तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियों के जरिए नीचे आया। उसने आते आते अपने सारे आंसू पोंछ लिए थे और चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन लेकर वो कल्याण सिंह के पास आते हुए बोला, जी कल्याण सिंह जी, क्या हुआ, बताइए क्या परेशानी है आपको। इतना बोलते हुए वो ढंग से सोफे पर बैठते हुए अपना सर एडजस्ट करने लगा। उसे ऐसा करते देख रजत बोले, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या करके आए हो जो इतने थके थके लग रहे हो। समर्थ ने कहा, मैं रात को ड्राइव कर रहा था डैड, अभी तो आया था, मैंने चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पिया और उससे पहले आप लोग मेरी क्लास लगाना शुरू कर दो। उसने एक नज़र भी त्रिशा को नहीं देखा था, जिससे पता नहीं क्यों पर अब त्रिशा को बुरा लग रहा था। उसे कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है, उसने अपने मन में कहा। अब तो मैं हर नज़रअंदाजी का बदला लूंगी तुमसे समर्थ रावत, बस तुम देखते जाओ, जो जो तुमने मेरे साथ किया है उससे 100 गुना बड़ा तुम्हारे साथ होगा, और मैं इस मेंशन से भी कहीं नहीं जाऊंगी, और एक दिन ऐसे ही करते करते अमर रावत भी मेरा हो जाएगा। ऐसा फ्यूचर देखते हुए त्रिशा के चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। कल्याण सिंह ने एक तेज आवाज में कहा, समर्थ, त्रिशा तुमसे शादी करना चाहती है। उनका इतना कहना था कि समर्थ को लगा उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसकी बेताब नज़रें त्रिशा के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वो पूछना चाहता हो, क्या वाकई त्रिशा उससे शादी करना चाहती है। कुछ देर पहले ही तो उसने कहा था कि उसे अमर पसंद है। समर्थ बिल्कुल सुन रह गया। त्रिशा ने अपनी पलकें झुका ली। समर्थ ने कहा, पर मुझे नहीं लगता कि त्रिशा ऐसा कुछ चाहती है, अगर वो ऐसा चाहती तो वो मुझसे बोल सकती थी। समर्थ की ऐसी बातें सुनकर त्रिशा ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है और माही भी वहीं थी, अगर तुम चाहो तो माही से पूछ सकते हो, सबके सामने मुझे झूठा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिशा के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनकर समर्थ की मानो आंखें बटन जितनी मोटी मोटी हो गईं और उसने कल्याण सिंह की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मुझे सबके सामने झूठा बना रही है, मैंने इसे ज़रूर कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पर इसने मना कर दिया। उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर कल्याण सिंह ने अपनी छड़ी सामने रखी टेबल पर पटकते हुए कहा, ठीक है, मान लिया तुम दोनों झूठ बोल रहे हो और तुम दोनों ही सच्चे हो, पर ये शादी होगी, अब ये फाइनल डिसीजन है। समर्थ और त्रिशा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वही समर्थ अभी भी त्रिशा को देख रहा था, जैसे वो अभी उठकर बोलेगी कि नहीं, उसे समर्थ से शादी नहीं करनी, पर त्रिशा ने ऐसा कुछ नहीं किया और समर्थ पर मानो बिजली गिर रही हो। अगर वो उसके भाई से प्यार करती है तो उससे शादी करने का क्या मतलब, क्या उसकी ज़िंदगी उसे कोई खेल लग रही है जो जैसे चाहे वैसे खेलेगी। कल्याण सिंह वहां से उठते हुए बोले, मैं कल ही सारा इंतजाम कर दूंगा। इतना बोलते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। रजत उठकर समर्थ के पास आए और फिर उसके बालों पर हाथ रखते हुए बोले, देख तूने गलती की है तो तुझे अब ये शादी भी निभानी पड़ेगी, कोई दूसरा चारा नहीं है बेटा। इतना बोलकर उन्होंने एक बार समर्थ के बालों में हाथ घुमाया और फिर उठकर वो भी वहां से चले गए। वहां बस दीक्षांत, त्रिशा और समर्थ बचे थे। दीक्षांत की भी सीटी पीटी गुल थी ये सुनकर कि त्रिशा समर्थ से शादी करना चाहती है। वो त्रिशा के पास बैठते हुए बोला, तुम श्योर हो कि तुम्हें इससे शादी करनी है, क्योंकि मैंने और अमर ने भी तुमसे कहा था कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, तब भी तुमने मना कर दिया। त्रिशा ने दीक्षांत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे किससे शादी करनी है, कब करनी है, ये सब मेरी मर्जी है, तो तुम दोनों को बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो उठी और फिर से अपने कमरे में चली गई। समर्थ ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहा, मुझसे शादी करनी है, पर ये नहीं बताना कि क्यों मुझसे शादी करनी है, ऊपर से बोल रही है कि मुझे बीच में बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अब मेरी शादी में भी मैं नहीं बोल सकता। फिर उसने दीक्षांत को देखते हुए कहा, और तू मुझ पर यकीन कर, मैं सच बोल रहा हूँ, इस लड़की ने मुझे सरेआम कहा था कि ये अब भी भाई को पसंद करती है, मुझे नहीं, और दादाजी के सामने कैसे मुझे झूठा बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये करना क्या चाहती है। दीक्षांत ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अब तू ज्यादा सोच रहा है, वो कुछ नहीं करना चाहती है, हर एक लड़की चाहती है कि उसका शारीरिक संबंध जिसके साथ बने उसका पति भी वही हो, कोई और नहीं, क्योंकि फिर लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, वो सिर्फ अपना फ्यूचर देख रही है और मुझे लगता है तुझे भी अपना फ्यूचर ही देखना चाहिए। इतना बोलकर वो उठा और बोला, मैं तेरे लिए कॉफी बनवाता हूँ किसी से। दीक्षांत ने इतना ही कहा था कि सीढ़ियों से तेज कदमों से चलती हुई जाह्नवी आई। जाह्नवी ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। दीक्षांत ने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब एकदम शायराना अंदाज में दिया, गुड मॉर्निंग भाभी जान, कैसी हैं आप। जाह्नवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर वो समर्थ को देखकर बोली,
आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। समर्थ ने एक गहरी सांस छोड़कर जानवी की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर अपने मन में कहा, एक तरफ मिस ब्यूटीफुल है जो सबका कितना ख्याल रखती है और दूसरी तरफ वो त्रिशा, मेरी ही किस्मत खराब है, क्या कर सकते हैं। वहीं दीक्षांत तब तेज कदमों से चलते हुए वापस उस कमरे में गया जहां जानवी ने माही को ठहरने को कहा था। माही जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी और खुद में बड़बड़ा रही थी, ये त्रिशा दी खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। समर्थ रावत से शादी करनी है इनको, मैं तो उनके घर एक पल नहीं रहना चाहती। उसने इतना ही कहा था कि उसे दीक्षांत की गुजरती हुई आवाज आई, तुम तो एक पल नहीं रहना चाहती, पर तुम्हें कई पल यहाँ गुजारने पड़ेंगे।